नमस्कार भारत, 6 सितंबर दिन गुरुवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति की हत्या के आदेश की बात को किया खारिज, कहा कभी नहीं की चर्चा।
Already General Mattis has come out very, very strongly. He was insulted by the remarks that were attributed to him.
SC/ST Act के खिलाफ मध्य प्रदेश में आज बंद, पूरे राज्य में हाई अलर्ट।
प्रधानमंत्री को हमारी भावनाओं से अवगत कराया जाए, इस काले कानून को पुनः विचार करके वापस लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सवर्णों का, पिछड़े वर्गों के, निजी हितों का मुद्दा है।
भारत प्रशासित कश्मीर में गैंगरेप के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या, सौतेली माँ को बनाया गया अभियुक्त।
एक लड़का आया यहाँ, वो आया मुझे घर में, बोला उसने, मुश्ताक अंकल आपका लड़की का डेड बॉडी जंगल में है। गया वहाँ, देखा डेड बॉडी दरख्त के पीछे ऐसी थी।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब के उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सीरियाई राष्ट्रपति असद की हत्या के निर्देश दिए थे। वुडवर्ड की नई किताब फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस में कहा गया है कि 2017 में सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद ट्रंप ने पेंटागन से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या का इंतजाम करने को कहा था। हालांकि ट्रंप ने इन सारे दावों को झूठा बताया है और कहा है कि ये सारी बातें लोगों को ठगने के लिए लिखी गई हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इस बारे में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से कभी चर्चा ही नहीं की। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भी किताब को किसी की बढ़िया कल्पनाओं से प्रेरित बताया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाली आईपीसी की धारा 377 पर फैसला सुना सकता है। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल हैं। मौजूदा वक्त में समलैंगिक संबंधों का आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देश के LGBTQ समुदाय के लोग और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे समलैंगिकों के अधिकारों का हनन बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो पर तेज भूकंप आने के बाद भूस्खलन में आत्सुमी शहर के कई घर तबाह हो गए हैं। कई लोग इमारतों में फंसे हुए हैं और कम से कम 10 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। यहाँ फंसे हुए एक यात्री ने कहा, ये बहुत थका देने वाला था, मुझे लगता है कि यहाँ आना ही मेरी गलती थी, आखिरकार अब मैं वापस जा सकता हूँ। भूस्खलन में फंसे एक यात्री के शब्द। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की मौत या सुनामी आने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वे का कहना है कि भूकंप का केंद्र क्षेत्रीय राजधानी सपोरो से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 थी। अमेरिका ने निकारागुआ से राजनीतिक कारणों से पिछले 5 महीनों से हिरासत में रखे गए सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की सरकार पर लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों को नज़रअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अशांति से हिंसा और अस्थिरता फैलती है। हिंसा में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। वहीं निकारागुआ के उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरियो ने कहा कि उनका देश बाहरी शक्तियों से भयभीत नहीं होगा। हिंसा की जांच कर रही फ्रांस्वा हैम्पसन ने कहा कि मरे हुए लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाना मुश्किल है।
We know how many cases we can document, but what we don't know is what proportion that is of the whole.
हम जानते हैं कि कितने मामलों को दर्ज किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं जानते कि पूरा आंकड़ा क्या है। वे लोग शवों को छिपा रहे हैं। अब पहले की तुलना में ज्यादा लोग गायब होने लगे हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि वो वाकई मरे भी हैं या नहीं। जांच आयोग की सदस्य फ्रांस्वा हैम्पसन के शब्द। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार इसके दो कारण हैं। पहला कारण मशहूर अमरीकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की एक किताब है और दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में ट्रंप प्रशासन के एक अज्ञात अधिकारी द्वारा लिखा गया लेख। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की हत्या की मांग की थी। ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधुवासिनी से।
The book means nothing. It's a work of fiction. Already General Mattis has come out very, very strongly.
इस किताब का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह मनगढ़ंत है। जनरल मैटिस ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। किताब में उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है उससे वो अपमानित हैं। अगर आप वुडवर्ड के अतीत को देखें तो पाएंगे कि उन्हें बाकी राष्ट्रपतियों से भी यही दिक्कत थी। उन्हें पब्लिसिटी पाकर कुछ किताबें बेचना अच्छा लगता है। बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप मशहूर अमरीकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की नई किताब में किए गए दावों को खारिज कर रहे हैं। दरअसल वुडवर्ड की किताब फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस में कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या के आदेश दिए थे। किताब में रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के हवाले से कहा गया है कि 2017 में सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद ट्रंप ने असद को जान से मारने की मांग की थी। किताब में कहा गया है कि मैटिस पहले ट्रंप की गुजारिश मान गए थे, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहा था कि वो इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। वुडवर्ड एक बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उन्होंने 1970 के दशक में वाटरगेट स्कैम में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की लिप्तता सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि ट्रंप ने इन सारे दावों को झूठ बताया है और कहा है कि ये सारी बातें लोगों को बरगलाने के लिए लिखी गई हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से कभी कोई चर्चा ही नहीं की। सबसे पहले इस किताब के कुछ अंश वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुए थे। इसके अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर व्हाइट हाउस के एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से एक लेख छपा। लेख में अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन की समस्याओं की जड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनैतिक रवैया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख की भी कड़ी आलोचना की है और अखबार की संपादकीय नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत और अपने ट्वीट्स में किताब के दावों को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा गया और न ही ऐसा कभी सोचा जाएगा। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भी किताब को किसी बढ़िया कल्पनाओं से प्रेरित बताया है। इन तमाम विवादों के बीच अगर अब किसी का इंतजार है तो वो है किताब लिखने वाले बॉब वुडवर्ड की प्रतिक्रिया का।
ट्रंप का असद की हत्या के आदेश से इनकार, ब्यूरो सुना रही थी सिंधुवासिनी। बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका के बीच आज कूटनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही 2+2 वार्ता होने जा रही है। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस भारत पहुंच चुके हैं। पोम्पियो कल पाकिस्तान में थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि यह बैठक भारत अमरीका के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत से बात की और उनसे इस बैठक की अहमियत के बारे में पूछा।
देखिए, तो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो पहली बार ये डायलॉग हो रहा है इंडिया के साथ और इस लेवल पर हो रहा है। पहले जो डायलॉग था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर होता था, तो अब पहली बार जब मिस्टर मोदी की विजिट थी यूएस में तब ये रखा गया था सुझाव कि इसको 2+2 को हम एक्टिवेट करेंगे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर। तो कहीं पर ये सेंस है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक पॉस्चरिंग है इससे ऊपर उठकर पॉलिटिकल डायरेक्शन की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की जरूरत है इस इन संबंधों को, और इसीलिए इसको इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत का भी पहली इकलौता 2+2 फ्रेमवर्क में डायलॉग है।
फिलहाल माइक पोम्पियो पाकिस्तान से होते हुए भारत आए हैं और पाकिस्तान का आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था उसको भी बंद किया गया है। क्या भारत और अमरीका के रिश्तों को उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए?
बिल्कुल, मुझे लगता है पहले भारत को ये काफी एक भारत और अमरीका के संबंधों में पाकिस्तान का जो रोल था वो नेगेटिव था, ये कहा जाता था कि अमेरिका हाइफनेट करता है रिलेशनशिप को, हर बार भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की बात करता है तो पाकिस्तान के संबंधों की बात करता है, तो वो अब बदल रहा है। भारत का जो रोल है अमरीकी विदेश नीति में वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर है, पाकिस्तान का जो रोल है वो एक कैसा देश है जिसके साथ कुछ जटिल समस्याएं हैं जिनसे जूझना पड़ रहा है, टेररिज्म है, अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान भारत के संबंध, पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, और शुरू से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी सख्त रहा है, तो वो जो एक तरह से एक प्रश्न चिन्ह हुआ करता था अमेरिकी विदेश नीति के ऊपर कि हमेशा पाकिस्तान के साथ पहले सख्त बातें करता है लेकिन जमीनी तौर पर कुछ नहीं कर पाता, उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। तो जब पोम्पे साहब अब भारत आएंगे तो मुझे लगता है भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सुनना चाहेंगे कि क्या मैसेज पोम्पे साहब ने दिया, अमरीका ने दिया नई सरकार को पाकिस्तान की, और क्या पाकिस्तान की नई सरकार कह रही है अपनी विदेश नीति के बारे में, आतंकवाद के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में और भारत के संबंधों के बारे में।
आज जो चर्चा होगी, आपको क्या लगता है टेबल पर कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका चर्चा कर सकते हैं?
यहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध इतने इस समय व्यापक हैं, ब्रॉड हैं, इतने ज्यादा डीप हैं कि समस्या की जो मुद्दे हैं उनको उनकी कमी नहीं है। आपको एक तरफ जो इंडो पैसिफिक है उसको देखना है, वहां पर चाइना की क्या विदेश नीति है उसको देखना है, दूसरी तरफ अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र है, और उसके तरफ हमारे बायलैटरल जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिसमें कि भारत की विदेश नीति से संबंधित मुद्दे हैं, रशिया से हमारे संबंध हैं और ईरान से संबंध हैं, और अमरीकी जो सैंक्शंस लग रहे हैं उनके ऊपर उनकी चर्चा होगी। मेरे ख्याल से समझ रहे हैं दोनों देश की ये प्लेटफॉर्म जो तय किया गया है यही एक असली में प्लेटफॉर्म असल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी हम मुद्दों को अलग अलग करके नहीं देख सकते कि ये विदेश नीति के मुद्दे हैं, ये रक्षा नीति के मुद्दे हैं, अब हम इसको इनको साथ में रखकर एक सामरिक तौर पर देखना पड़ेगा।
भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता, अधिक जानकारी दे रहे थे हर्षपंत। रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर आज भारत बंद के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SC ST एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा की आशंका के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और आज पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
SC ST एक्ट को लेकर हो रहे विरोध का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला है। इसी वजह से माना जा रहा है कि भारत बंद का असर भी यहीं देखने को मिलेगा। 10 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। भिंड जिले में लोगों ने बुधवार को धारा 144 लागू होने के बावजूद सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। वहीं विदिशा, सागर और खरगोन में भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। सपाक्स यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था के साथ ही करीब 35 अन्य संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है और कहा है कि वह आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी अक्षय तिवारी ने बताया,
माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हमारी भावनाओं से अवगत कराया जाए, इस काले कानून को पुनः विचार करके वापस लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सवर्णों का, पिछड़े वर्गों के, निजी हितों का मुद्दा है। ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, ये सांकेतिक रैली थी आज, तो 6 तारीख को हम बंद का आह्वान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज के बंद के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी किस्म की अप्रिय घटना को टाला जा सके। IG लॉ एंड ऑर्डर मकरंद दियोस्कर ने बताया,
घटना के आधार पर सभी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क किया गया है और निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर इन सभी संगठनों से समन्वय स्थापित करें, संपर्क स्थापित करें।
वहीं सत्ताधारी भाजपा के मंत्री लाल सिंह आर्य SC ST एक्ट को लेकर हो रहे प्रदर्शन को बेमानी मान रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इसे पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, उसके बाद ही लोगों को इसका विरोध करना चाहिए।
ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, ये गलत है पूरी तरह से। पहले भी जो एक्ट था वही एक्ट अभी है, कोई कड़ा एक्ट या इस प्रकार का जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वैसा इस प्रकार का एक्ट नहीं है।
वहीं विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस वक्त समाज में बंटवारा करने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा,
सवर्ण समाज और OBC समाज के बीच में जो टकराव की स्थिति शिवराज सिंह जी पैदा कर रहे हैं, इनकी घटिया मानसिकता और राजनीतिक सोच, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यदि इस तरह की भावना लेकर काम करेंगे तो प्रदेश या देश के हित में नहीं।
वहीं आज बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग में लाइसेंसी हथियारों को जमा करा लिया गया है। पिछली बार भारत बंद के दौरान इस इलाके में भारी हिंसा हुई थी। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में यह आंदोलन फैल चुका है और अब सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि आज का भारत बंद बगैर किसी अप्रिय घटना के गुजर जाए। सरकार महसूस कर रही है कि अगर यह आंदोलन लंबा चलता है तो उसका असर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बच्ची के माता पिता गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने इस घटना में बच्ची की सौतेली मां को अभियुक्त बनाया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
दरख्त के पीछे ऐसी थी, जब वहां गया तो वहां लाश उठी, हमने देखा उसके यहां से कुछ सामान नहीं था साथ,
कुछ नहीं था।
ये थे 9 वर्षीय पीड़िता बच्ची इंशा के पिता मुश्ताक अहमद गनाई। 11 दिनों के बाद पिता की खोई हुई बच्ची जब मिली तो पिता के लिए उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के बोनियार इलाके के लड़ी गांव के खूबसूरत जंगल और दिलकश नज़ारे भी इंशा की दिल दहलाने वाली घटना सामने आने के बाद उदास हैं। इंशा का मृत्यु शव 11 दिन के बाद घर के पास एक जंगल से मिला। 11 दिन पहले इंशा अचानक घर से गायब हो गई थी और 11 दिनों तक पीड़िता का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने दावा किया है कि पीड़िता का पहले सामूहिक बलात्कार किया गया है और जिसके बाद उनकी हत्या की गई है। जब मैं मंगलवार को इंशा के घर पहुंचा तो यहां कई लोग इंशा के पिता और उनकी मां के आसपास बैठे थे और उनसे हमदर्दी जता रहे थे। इंशा के पिता उस दिन को याद करते हैं जब उनकी बेटी गायब हो गई थी।
मैंने खुद उठाया बाइक, निकला बाहर, चलाया इन बेटियों को, दो को भी, इसको भी पीछे से। मैंने बोला चलो हम देखेंगे त्रिकांजन में होगा। गया त्रिकांजन, त्रिकांजन में भी नहीं मिला। आया वहाँ से, वापस पहुँच गया यहाँ। यहाँ मैंने इनको ड्रॉप किया, पहुँच गया। मैंने बोला पार्क में लिया होगा किसी ने। ईद के दिन होते हैं ये ऐसे वाक़े, उठाते लेते हैं बच्चों को पार्क में। यहाँ पार्क में पहुँचा, पार्क में मैंने लगभग 8:30 बजे तक ढूँढा, वहाँ नहीं मिला मुझे। मैंने बोला ये गई कहाँ।
पिता कहते हैं कि 11 दिन के बाद जब बेटी मिली तो उनकी लाश भी देखने के काबिल नहीं थी।
एक लड़का आया यहाँ, गुबुडार का लड़का, मुजफ्फर खान है उसका बाप का नाम, उसका नाम है तासिर। वो आया मुझे घर में, बोला उसने मुश्ताक अंकल आपका लड़की का डेड बॉडी जंगल में है। चढ़ा मैं यहाँ से, गया वहाँ, देखा डेड बॉडी दरख्त के पीछे ऐसी थी।
मुश्ताक अहमद ने वर्ष 2003 में एक स्थानीय महिला फामिदा से शादी की थी जिनसे उनके 3 बच्चे हुए हैं। फिर वर्ष 2009 में उन्होंने एक गैर कश्मीरी महिला खुशबू बेगम जो कि झारखंड की रहने वाली हैं से शादी कर ली थी जिनसे भी उनके 3 बच्चे हुए हैं। इंशा दूसरी पत्नी खुशबू की बेटी थी। खुशबू कहती हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बेटी की हत्या की गई।
जिसने भी मेरे लड़की के साथ किया जुलुम ऐसे उसको कड़ी से कड़ी फांसी मिलना चाहिए उसको।
पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक इंशा की सौतेली माँ फामिदा और सौतेले भाई साहिल समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी साजिश को सौतेली माँ फामिदा ने बुना था। जिला बारामूला के SSP इम्तियाज हुसैन।
ये सब जो लोग हैं इन्होंने इसका रेप किया है, उसके बाद उसका कत्ल किया गया है जिसमें एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और उसको स्ट्रैंगलेट भी किया है इसकी सौतेली माँ ने। साथ में फिर एक चाकू से इसकी आँखें भी निकाल दी गई और उसके बाद जो इसके प्राइवेट पार्ट्स है और चेस्ट है उस पे एसिड फेंका गया है।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में जम्मू के कठुआ में बकरवाल समुदाय की 8 साल बच्ची के साथ भी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। माजिद जहांगीर, BBC, लड़ी उड़ी कश्मीर।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं सिंधु वासिनी।
जी शाहिद, आज की बड़ी खबर है IPC की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला।
बिल्कुल,
ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। IPC की धारा 377 दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती है और ऐसे मामलों में अगर आरोप तय हो गया तो जुर्माने के साथ साथ 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और ये गैर जमानती अपराध है। फिलहाल भारत का LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर समुदाय इसे अपने मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है और इसी मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में 377 के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। आज उसका फैसला आ सकता है और एक अहम बात ये भी है कि फैसला सुनाने वाली जजों में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल हैं
जो अब रिटायर भी होने वाले हैं।
जी, 2 अक्टूबर को उनका आखिरी दिन है उनके कार्यकाल का। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा अपराध की श्रेणी में डाल दिया। तो आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे होंगी। दूसरी बड़ी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है, जो कई अखबारों में है। कोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार और एसिड अटैक के मामलों में जिस तरीके से महिलाओं और लड़कियों को मुआवजा मिलता है, ठीक वैसे ही पुरुषों और लड़कों को भी अगर वो पीड़ित हैं तो मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि पीड़ितों के साथ जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
एक खबर मैं भी बता दूं कि हिंदुस्तान पे अखबार में खबर है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड अब जरूरी नहीं है, ये कहा है यूआईडीआई ने।
जी, और इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि अरुण जेटली ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत लगातार गिर रही थी उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वैश्विक वजहें हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सिंधुवासिनी अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
सोमवार को अफगान तालिबान ने जिहादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की पुष्टि की। अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के दूतावासों पर हुए कई हमलों के लिए हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन इतिहास में जाएं तो तालिबान हक्कानी अमेरिका और पाकिस्तान के चारों के साथ मिलकर काम करने की बातें होती हैं। अमेरिका की आंखों का तारा रहे हक्कानी, उसकी आंखों की किरकिरी कैसे बन गए, आज दुनिया जहां में इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रहे हैं आदर्श राठौर।
दुनिया जहां पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर है अफगानिस्तान का खूबसूरत पहाड़ी प्रांत पख्तिया। छोटी छोटी घाटियों वाले इस कबायली इलाके में ज्यादातर पश्तून रहते हैं। सर्दियों में ये वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं, मगर ये प्रांत अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट वांटेड चरमपंथियों में शुमार रहे जलालुद्दीन हक्कानी की वजह से पहचाना जाता है, जिनका यहाँ जन्म हुआ था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब हक्कानी ऐसे मुजाहिदीन के तौर पर उभरे जिन्होंने सोवियत सेनाओं की नाक में दम कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी उस समय बड़ी खुशी से पाकिस्तानी सेना के जरिए जलालुद्दीन हक्कानी और उनके मुजाहिदीनों को आर्थिक और सामरिक मदद दे रही थी। पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सबाहत जकारिया बताती हैं कि CIA के लिए हक्कानी काफी महत्व रखते थे।
जलालुद्दीन हक्कानी का सोवियत इन्वेजन के वक्त तो ये रोल था कि वो एक बहुत ही जाने माने मुजाहिदीन के लीडर थे, और क्योंकि वो उस वक्त भी जो है उनके एक शनाख्त थी, उनकी एक पहचान थी, तो CIA और ISI ने मिलके जो है वो उनको फंड किया, उनको हेल्प की मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर फर्दर।
CIA और ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अनुभवी और दक्ष लड़ाकों का एक समूह बन गया था, मगर 1990 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हक्कानी से दूरी बना ली। मगर हक्कानी नेटवर्क का प्रभाव कम नहीं हुआ। कई बार जलालुद्दीन हक्कानी से मिल चुके पत्रकार अहमद राशिद बताते हैं कि उन्होंने फंड जुटाने के लिए और भी कई तरीके इजाद कर लिए थे।
वो कमाल के आदमी थे, मतलब जब अफगान मुजाहिदीन सोवियत हमले के खिलाफ लड़ रहे थे तब वह अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और CIA की आंखों के तारे थे। उन्होंने खूब पैसा बनाया, ड्रग्स का खूब कारोबार किया, ड्रग्स के जरिए अपनी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाया। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना के भी करीबी थे और उनके लिए कई काम किए।
अफगानिस्तान में जब एक तरफ तालिबान था तो दूसरी तरफ अलकायदा, तब भी हक्कानी नेटवर्क का अपना अलग अस्तित्व रहा। यहाँ तक कि वो तालिबान की सरकार में मंत्री भी रहे मगर अपने संगठन को अलग बनाए रखा। वरिष्ठ पत्रकार सबाहत जकारिया बताती हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी तालिबान के साथ होकर भी उनसे दूर रहे क्योंकि इसी में उनका फायदा था।
हक्कानी नेटवर्क जो था वो पहले से मौजूद था और वो एक फैमिली नेटवर्क है। तालिबान के साथ उनको मर्ज होने का कोई एडवांटेज नहीं था, कभी भी महसूस होता, क्योंकि उनके पास अपनी एक पावर थी।
सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार बताते हुए अफगानिस्तान में अभियान चलाने का ऐलान किया। कुछ महीनों बाद हक्कानी वजीरिस्तान में सामने आए। यहीं से उन्होंने अपने सहयोगी रहे अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया जो अब अफगानिस्तान पर हमले कर रहा था। वरिष्ठ पत्रकार अहमद राशिद बताते हैं,
I think that was the biggest mistake of his life and I met him during...
मुझे लगता है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। वह तालिबान सरकार में मंत्री थे, फिर 9/11 हुआ और CIA ने उनसे किनारा कर लिया, फिर लादेन ने भी उनसे किनारा कर लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने अलकायदा में शामिल होने का फैसला किया था।
अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हक्कानी 2001 के बाद मोस्ट वांटेड चरमपंथी बन गए। अमेरिकी अभियान अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को करीब ले आया। इसी दौरान हक्कानी नेटवर्क ने दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में जड़ें गहरी की और यहीं से अभियान चलाना शुरू किया। अमेरिका ने कई आत्मघाती हमलों और अपहरणों के लिए हक्कानी को जिम्मेदार बताया। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अमेरिका ने ड्रोन और हवाई हमले किए तो लड़ाकों ने भागकर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पनाह ली। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार सबाहत ज़कारिया बताती हैं,
पाकिस्तान के जो वजीरिस्तान एरिया है उसके अंदर तो इनका जो है वो बेस था, उसके अलावा अफगानिस्तान में ऑब्वियसली वो जाकर ऑपरेट करते रहे हैं।
अमेरिका ने 2012 में हक्कानी नेटवर्क को प्रतिबंधित कर दिया था, मगर पाकिस्तान ने 2014 में पेशावर में स्कूल पर हुए चरमपंथी हमले के बाद 2015 में लाए गए नेशनल एक्शन प्लान के तहत इसे प्रतिबंधित किया। मगर हाल ही में फिर अमेरिका ने ये आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को चरमपंथी समूह के खिलाफ लड़ने के लिए दी जाने वाली मदद रोक दी कि वो इस दिशा में सही से काम नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके विवेक काटजू बताते हैं,
जो अमेरिका कहता है वो सही है, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का इस्तेमाल करता रहा है। हक्कानी नेटवर्क तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है अफगानिस्तान में।
एक समय सोवियत संघ के आक्रमण के खिलाफ अफगान संघर्ष के प्रतीक जलालुद्दीन हक्कानी का अफगानिस्तान में एक दशक के खून खराबे को लेकर भी जिक्र होता है, मगर जानकार कहते हैं कि अब उनकी मौत का हक्कानी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई साल पहले ही वो अपने बेटे सिराजुद्दीन को जिम्मेदारी सौंप चुके थे। आज सिराजुद्दीन अफगान तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और अफगान सरकार, अमरीका के सहयोगियों और भारत का मानना है कि वो अभी भी अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे आदर्श राठौर, कैसा लगा हमें जरूर लिखें। अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सुबह सुबह आपको न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं जहां पर US ओपन खेला जा रहा है और आज विमेन सिंगल्स में मुकाबला होगा स्पेन के खिलाड़ी कार्ला सोरेज नवारो का अमेरिका के खिलाड़ी मैडिसन कीस के साथ और ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। तो वही मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगे नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जॉन मिलमैन के साथ। और अब जरा नजर डालिए क्रिकेट के ग्राउंड पर, जहां पर भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड यानी कि BCCI ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर नवंबर में होने वाली सीरीज का स्केड्यूल जारी कर दिया है। वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैच, 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। राजकोट में 4 से 8 के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। गुवाहाटी में 31 अक्टूबर को वनडे सीरीज और 4 नवंबर को कोलकाता में T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो वहीं बाढ़ प्रभावित केरल में भी एक मैच खेला जाएगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम में वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को होगा। दौरे का अंत 11 नवंबर को चेन्नई में होने वाले T20 से होगा। आपको बता दें भारत में टेस्ट सीरीज खेलने वेस्टइंडीज की टीम इससे पहले 2013 में आई थी, यानी कि अब 4 साल बाद वो वापस भारत के दौरे पर है।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार सिंधुवासिनी से।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब के उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सीरियाई राष्ट्रपति असद की हत्या के निर्देश दिए थे। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो पर तेज भूकंप आने के बाद भूस्खलन में आत्सुमी शहर के कई घर तबाह हो गए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमत से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाली IPC की धारा 377 पर फैसला सुना सकता है। अमेरिका ने निकारागुआ से राजनीतिक कारणों से पिछले 5 महीने से हिरासत में रखे गए सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आग्रह किया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।